एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत। आज हम एक बेहद जरूरी और सच कहूं तो आज के दौर की नब्ज पर हाथ रखने वाली किताब पर चर्चा करने वाले हैं, याशा मॉन्क की द ग्रेट एक्सपेरिमेंट।
नमस्कार। वाकई ये किताब एक ऐसे सवाल से सीधी टक्कर लेती है जो शायद आज दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है।
कौन सा सवाल?
यही कि अलग अलग पहचान, आस्था और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ एक लोकतांत्रिक छत के नीचे बराबरी और शांति से कैसे रह सकते हैं।
सुनने में तो काफी सीधा लगता है ये।
हाँ लगता है, लेकिन इतिहास देखें तो ये इंसानियत के सबसे मुश्किल कामों में से एक रहा है। सच में
बिल्कुल, और इसीलिए ये इतनी प्रासंगिक है ना, चाहे हम भारत की बात करें या कहीं और की। ये डाइवर्सिटी में यूनिटी वाली चुनौती तो हर रोज सामने है।
हर रोज हम लगातार खबरों में लिखते हैं तनाव, पहचान की राजनीति, हम बनाम वो की बातें। ये सब क्या है?
सही बात है।
तो ये किताब इसी बड़े चल रहे प्रयोग को समझने की एक कोशिश है, और ये मानती है कि रास्ता मुश्किल है पर शायद नामुमकिन नहीं।
अच्छा, तो चलिए फिर समझते हैं इस प्रयोग को, पर्ते खोलते हैं इसके।
बिल्कुल, समझने के लिए शुरुआत शायद लेखक से करनी चाहिए। याशा मॉन्क।
हाँ बताइए उनके बारे में, कौन है ये?
ये एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर हैं, और दिलचस्प बात ये है कि उनका जन्म जर्मनी में हुआ लेकिन उनके माता पिता पोलैंड से आए यहूदी थे।
ओह अच्छा, तो मतलब पहचान का सवाल, माइनॉरिटी होने का एहसास, ये सब उनके लिए सिर्फ थ्योरी नहीं है।
एग्जैक्टली, ये उनका जिया हुआ सच है। एक नई जगह, अपनी जड़ें जमाने की कोशिश, ये सब उन्होंने खुद अनुभव किया है।
हाँ, और मुझे लगता है यही बात उनके नजरिए को खास बनाती है। वो सिर्फ एक एकेडमिक दूरी से नहीं लिख रहे।
बिल्कुल, आजकल वो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और द अटलांटिक जैसे बड़े प्रतिष्ठित मंचों पर लिखते भी हैं। उनकी पिछली किताब भी काफी चर्चित रही थी, द पीपल वर्सेस डेमोक्रेसी।
हाँ मैंने सुना है उसके बारे में, उसने भी डेमोक्रेसी के चैलेंजेस पर काफी ध्यान खींचा था।
और एक और खास बात जो मुझे उनके लेखन में दिखती है वो है उनका बैलेंस, उनका संतुलन।
मतलब
किसी एक तरफ झुके हुए नहीं लगते। वो उदारवादी लोकतंत्र के उसूलों के पक्के हिमायती हैं, लेकिन वो लेफ्ट या राइट दोनों तरफ की जो एक्सट्रीम सोच होती है ना,
हाँ,
उस पर सवाल उठाने से हिचकते नहीं। उनका जोर प्रैक्टिकल हल ढूंढने पर ज्यादा लगता है बजाय किसी एक पक्ष को सही साबित करने के। एक खुला ईमानदार डायलॉग शुरू करना चाहते हैं वो, ऐसा लगता है।
ये अप्रोच तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो फिर आते हैं किताब के टाइटल पर, ये ग्रेट एक्सपेरिमेंट, ये महान प्रयोग, आखिर है क्या चीज?
इसका जो कोर आइडिया है वही बड़ा दिलचस्प है। मॉन्क कहते हैं कि इतिहास में पहली बार हम बड़े पैमाने पर ऐसे समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो दो चीजें एक साथ चाहते हैं।
दो चीजें कौन सी?
पहली, गहरी विविधता, मतलब अलग अलग नस्ल, धर्म, संस्कृति के लोग एक साथ रहें, और दूसरी, सच्चा लोकतंत्र।
सच्चा लोकतंत्र यानी जहां सब बराबर हो, कानून का राज हो।
हाँ बिल्कुल, जहां सभी नागरिक बराबर हों, कानून का राज हो, और सबको अपनी बात कहने और शासन में हिस्सा लेने का हक हो।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आप कह रहे हैं कि ये नया है? मतलब इतिहास में तो बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं, रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, वहां भी तो तरह तरह के लोग रहते थे।
बिल्कुल सही सवाल। फर्क ये है, मॉन्क कहते हैं कि उन साम्राज्यों में विविधता तो थी पर लोकतंत्र और बराबरी नहीं थी। अक्सर क्या होता था कि एक ग्रुप का दबदबा होता था, बाकी लोग उसके अधीन होते थे।
अच्छा हाँ।
दूसरी तरफ जो शुरुआती लोकतंत्र बने, जैसे मान लीजिए एथेंस या कुछ शुरुआती यूरोपीय देश, वो ज्यादातर होमोजीनियस समाजों में बने, मतलब जहां लोगों की भाषा, धर्म, बैकग्राउंड काफी मिलते जुलते थे।
ओके समझ गया।
तो ये कॉम्बिनेशन डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी, वो भी बराबरी के साथ, यही है वो ग्रेट एक्सपेरिमेंट जिसकी बात मॉन्क कर रहे हैं। ये इतिहास में पहले स्केल पे नहीं हुआ है।
और ये इतना मुश्किल क्यों है? किताब का एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये भी है ना कि इंसान की फितरत में ही कुछ ऐसा है।
हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि इंसान की फितरत में कहीं गहरे अपने ग्रुप के लिए, इन ग्रुप के लिए एक खिंचाव होता है, और जो बाहर के लोग हैं, आउट ग्रुप, उनके प्रति थोड़ा शक, थोड़ी दूरी बनाने की टेंडेंसी होती है,
जिसे वो खबीलापन या ट्राइबलिज्म कहते हैं।
एग्जैक्टली, ट्राइबलिज्म। और वो इसे कोई मॉरल फीलिंग नहीं मानते बल्कि एक साइकोलॉजिकल रियलिटी की तरह देखते हैं। हजारों साल तक हम छोटे अपने जैसे लोगों के ग्रुप्स में रहे हैं, तो अजनबियों पर, खासकर अलग दिखने या मानने वाले अजनबियों पर भरोसा करना हमारे लिए उतना नेचुरल नहीं रहा है, और यही टेंडेंसी इन मिले जुले समाजों को बहुत नाजुक बना देती है।
नेताओं के लिए आसान हो जाता है इसे भड़काना, हम बनाम वो।
बहुत आसान, लेकिन और ये जरूरी बात है, माउंक यही रुक नहीं जाते। वो कहते हैं कि इस रियलिटी को जानकर हम इसे संभालने के तरीके ढूंढ सकते हैं। ये किताब एक तरह से इसी पोटेंशियल सक्सेस का नक्शा बनाने की कोशिश है, एक स्ट्रक्चर्ड होप जगाने की।
अच्छा, तो ये नक्शा कैसा दिखता है? किताब कैसे आगे बढ़ती है, खासकर जब वो बताते हैं कि ये प्रयोग फेल कैसे हो सकता है? मुझे लगता है खतरों को समझना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, और किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर फोकस करता है कि ये विविध लोकतंत्र किन मुख्य तरीकों से पटरी से उतर सकते हैं। माउंक तीन बड़े खतरे गिनाते हैं।
हाँ, तीन खतरे। ओके, पहला क्या है?
पहला है अराजकता, एनार्की। ये वो स्थिति है जब समाज पूरी तरह टूट जाता है, अलग अलग समूहों के बीच भरोसा खत्म, कानून का राज खत्म और हिंसा फैल जाती है। सरकार या तो कमजोर पड़ जाती है या खुद किसी एक तरफ हो लेती है।
मतलब लोग फिर अपने अपने ग्रुप्स में सिमट जाते हैं।
जी, सुरक्षा के लिए। बिल्कुल,
हाँ, हाँ।
अपने अपने कबीलों में। लेबनान का सिविल वॉर या जैसे युगोस्लाविया टूटा,
बिल्कुल,
वो इसके दुखद उदाहरण है। पूरी तरह से सिस्टम का ढह जाना,
भयानक है ये तो।
दूसरा खतरा क्या है?
दूसरा है वर्चस्व, डोमिनेशन।
इसमें समाज टूटता नहीं, बल्कि ऊपर से शायद शांति भी दिखे, लेकिन वो शांति अन्याय और दमन पर टिकी होती है।
अच्छा,
कैसे?
हाँ।
मतलब एक ताकतवर समूह, चाहे वो नंबर में ज्यादा हो या पॉलिटिकली इकोनॉमिकली पावरफुल हो, वो बाकी समूहों को सिस्टमैटिक तरीके से दबाकर रखता है, उनके अधिकार छीन लेता है, उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन बना देता है।
जैसे अमेरिका में सेग्रीगेशन का दौर था,
या साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड। बिल्कुल, वो इसके क्लासिक उदाहरण है। यहाँ डेमोक्रेसी का सिर्फ नाम रह जाता है, उसकी आत्मा खत्म हो जाती है। और माउंक चेत आते हैं कि आजकल कई पॉपुलिस्ट नेता इसी वर्चस्व को बनाए रखने या वापस लाने का डर दिखाकर पावर में आते हैं।
ये भी एक बड़ा खतरा है। और तीसरा?
ये मुझे आज के दौर में काफी महसूस होता है, जैसा आपने कहा।
हाँ, तीसरा है विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। और ये शायद आज के पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए सबसे चालाक और चिंताजनक खतरा है।
चालाक क्यों?
क्योंकि इसमें न तो खुला ग्रह युद्ध होता है, ना ही साफ साफ दमन, बल्कि समाज धीरे धीरे अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है।
लोग अपने अपने बबल्स में, अपने खोल में सिमट जाते हैं।
अलग मोहल्ले, अलग स्कूल, अलग न्यूज चैनल, यहाँ तक कि सच भी अलग अलग।
एग्जैक्टली, एक ही देश में रहते हुए भी लोग अजनबियों की तरह हो जाते हैं। आपसी समझ, सहानुभूति, एक कॉमन पहचान, सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इससे मिलकर कोई भी बड़ा काम करना, यहाँ तक कि डेमोक्रेसी को ठीक से चलाना भी मुश्किल हो जाता है। समाज अंदर से खोखला होने लगता है।
ये तीनों खतरे, अराजकता, वर्चस्व, विखंडन, वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। ये हमें एक तरह का, क्या कहें, डायग्नोस्टिक टूल देते हैं कि हमारे समाज में अगर तनाव है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है।
बिल्कुल।
तो फिर अगर ये खतरे हैं तो माउंक समाधान क्या सुझाते हैं? क्या कोई रास्ता है इन खतरों से बचने का?
हाँ, यही किताब का सबसे कंस्ट्रक्टिव हिस्सा आता है। माउंक सबसे पहले दो पुराने और उनके हिसाब से फेल हो चुके मॉडलों को खारिज करते हैं।
कौन से दो मॉडल?
पहला, मेल्टिंग पॉट, यानी सबको पिघलाकर एक जैसा बना दो वाला आइडिया। ये मॉडल अक्सर माइनॉरिटीज पर अपनी पहचान छोड़कर मेजॉरिटी कल्चर में घुलमिल जाने का दबाव डालता है, जो कि ठीक नहीं है, अन्यायपूर्ण है।
और दूसरा?
दूसरा मॉडल जिसे वो विखंडन से जोड़ते हैं, वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का वो रूप जो ग्रुप्स को और ज्यादा अलग थलग कर दे, जहां हर कोई सिर्फ अपने हक की बात करे और कोई कॉमन ग्राउंड बनाने में इंटरेस्टेड ही ना हो।
ओके, तो अगर ये दोनों रास्ते सही नहीं हैं, तो फिर तीसरा रास्ता क्या है? माउंक क्या कहते हैं?
माउंक का तीसरा रास्ता तीन पिलर्स पर खड़ा है। पहला और सबसे अहम है एक साझा नागरिक पहचान, शेयर्ड सिविक आइडेंटिटी।
बनाना
साझा नागरिक पहचान
मतलब किस आधार पर बनेगी ये?
ये पहचान खून, नस्ल या धर्म पर आधारित न होकर, बल्कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर, कानूनों पर, इंस्टीट्यूशंस पर और एक साझा भविष्य की उम्मीद पर टिकी हो।
इसमें इतिहास का क्या रोल है?
अहम रोल है। देश के इतिहास को ईमानदारी से देखना, अच्छी बातों पर गर्व करना, बुरी बातों से सीखना, साझा प्रतीक जैसे राष्ट्रीय भाषा बिना दूसरी भाषाओं को दबाए, नेशनल हॉलीडेज, एक ऐसा करिकुलम जो देश की सक्सेस के साथ साथ उसकी कमियों पर भी बात करे, ये सब इसे बनाने में मदद कर सकते हैं। लक्ष्य एक ऐसा देश प्रेम जगाना है जो सबको जोड़े, किसी को बाहर ना करे।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर बनेगी कैसे ये पहचान? सिर्फ कह देने से तो नहीं बन जाती?
बिल्कुल नहीं। और यही दूसरा पिलर आता है, संपर्क और जुड़ाव, कंटैक्ट एंड कनेक्शन।
संपर्क मतलब लोगों का आपस में मिलना जुलना।
हाँ, सोशल साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, कॉन्टैक्ट हाइपोथीसिस। ये कहती है कि जब अलग अलग ग्रुप्स के लोग बराबरी के स्तर पर एक दूसरे के साथ मिलकर किसी साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो उनके बीच के जो पूर्वाग्रह होते हैं वो कम होते हैं, आपसी समझ बढ़ती है।
अच्छा, तो इसके लिए क्या चाहिए?
इसके लिए ठोस नीतियां और इंस्टीट्यूशंस चाहिए, जैसे अच्छे सरकारी स्कूल जहां हर तबके के बच्चे साथ पढ़ें, सुरक्षित सुंदर पब्लिक पार्क्स, लाइब्रेरीज, कम्युनिटी सेंटर्स जहाँ लोग मिल सकें, शायद नेशनल सर्विस जैसे प्रोग्राम जहाँ युवा साथ काम करें। लक्ष्य है कि हम सिर्फ एक ही देश के नागरिक न हों, बल्कि एक दूसरे के पड़ोसी बने, एक दूसरे को जानें।
ओके, संपर्क और जुड़ाव। और तीसरा पिलर आपने कहा था तीन है।
तीसरा और शायद सबसे बुनियादी है आशा और आर्थिक निष्पक्षता, होप एंड इकोनॉमिक फेयरनेस। मॉन्क इस पर बहुत जोर देते हैं।
आर्थिक निष्पक्षता, इसका क्या कनेक्शन है सामाजिक जुड़ाव से?
गहरा कनेक्शन है। उनका तर्क है कि जब लोगों को अपना और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में लगता है, जब बेरोजगारी बढ़ती है, जब इनइक्वालिटी बढ़ती है, तो वो ज्यादा आसानी से उन नेताओं की बातों में आ जाते हैं जो उनकी मुसीबतों के लिए किसी दूसरे ग्रुप को जिम्मेदार ठहराते हैं। इनसिक्योरिटी और डर, वो प्रेजुडिस को हवा देते हैं।
मतलब पेट का सवाल और पहचान का सवाल जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है।
बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसलिए एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट, सबके लिए अच्छी शिक्षा और हेल्थ केयर, रोजगार के मौके और ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तरक्की का एहसास कराएं, ये सिर्फ इकोनॉमिक मुद्दे नहीं है,
ये उस महान प्रयोग को सफल बनाने की सामाजिक और राजनीतिक जरूरतें भी हैं।
एग्जैक्टली। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम फेयर है और उनके पास आगे बढ़ने का मौका है, तो वे मुश्किल सामाजिक सवालों पर ज्यादा खुले दिल से सोचने को तैयार होते हैं, उन्हें भविष्य से आशा मिलती है।
तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? कौन से बड़े सबक हैं इस किताब में जो हमें याद रखने चाहिए?
मेरे लिए सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि ये जो विविध लोकतंत्र का प्रयोग है, ये वाकई नया है और नाजुक है। इसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इतिहास हमें सक्सेस का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं देता, बल्कि फेलियर्स की चेतावनियां ज्यादा देता है। हमें इसे लगातार सीखना होगा, इस पर काम करना होगा।
दूसरी बात जो मुझे अहम लगी वो है इंसान के कबीलेपन की हकीकत को मानना। इसे इग्नोर करने या सिर्फ मॉरल लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसी पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे जो इस नेचुरल टेंडेंसी के बुरे असर को कम करें, लोगों के बीच पुल बनाए, न कि दीवारें खड़ी करें।
बिल्कुल। तीसरा, असफलता के वो तीन स्पष्ट रास्ते, अराजकता, वर्चस्व, विखंडन, ये हमें किसी भी समाज को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। क्या प्रॉब्लम सिस्टम के अन्याय में है, वर्चस्व, या समाज के बिखराव में, विखंडन, या फिर पूरी तरह टूटने के कगार पर, अराजकता? सही डायग्नोसिस ही सही इलाज की तरफ ले जा सकता है।
और चौथा, मुझे लगता है सबसे उम्मीद जगाने वाली बात यह है कि हमें गलत विकल्पों के बीच चुनने को मजबूर नहीं होना है। मतलब या तो अपनी पहचान पूरी तरह मिटा दो या फिर पूरी तरह अलग थलग हो जाओ, ऐसा नहीं है। माओं के बीच का रास्ता सुझाते हैं।
हाँ, साझा नागरिक मूल्यों पर एकजुट रहते हुए अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को भी बचाए रखना, ये बैलेंस साधना ही असली चुनौती है और यही शायद रास्ता भी है।
इसी से जुड़ा पांचवा पॉइंट है, एक सधा हुआ आशावाद, रियलिस्टिक होप।
हाँ बिल्कुल, मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, इंसानी स्वभाव की जड़ें गहरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। समझदारी भरी नीतियों, इंस्टीट्यूशंस और सिटीजन एक्टिविज्म से फर्क लाया जा सकता है। हम हालात के सिर्फ विक्टिम नहीं हैं, हम इसे बेहतर बनाने में अपना रोल निभा सकते हैं।
इस किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो दिमाग में रह जाते हैं। एक जो मुझे खास तौर पर याद रहा वो ये है, सार रूप में कहूं तो इतिहास हमें सफल होने का रास्ता नहीं दिखाता, बस असफल होने की चेतावनियां देता है। ये याद दिलाता है कि हमें कुछ नया करना होगा, पुराने ढरे पर चलकर काम नहीं बनेगा।
हाँ, ये बहुत पावरफुल है। और एक और जो उनके सोल्यूशन का निचोड़ है, चुनाव मेल्टिंग पॉट और अलग थलग कबीलों के बीच नहीं है, हमें तीसरा मॉडल बनाना होगा, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर एकजुट नागरिक जो अपनी सांस्कृतिक विरासत भी सहेज कर रखें। ये उस मुश्किल बैलेंस की बात है, कैसे हम एक भी बने और अनेक भी रहें।
और ये बात जमीनी हकीकत पर जोर देती है, विविध लोकतंत्र सिर्फ नेक इरादों से नहीं चलता, इसे संपर्क बढ़ाने वाले संस्थान, साझा अपनेपन का एहसास कराने वाले सार्वजनिक स्थान और सबको बेहतर भविष्य की उम्मीद देने वाली अर्थव्यवस्था चाहिए। मतलब सिर्फ बातें नहीं, कॉन्क्रीट एक्शन चाहिए। अच्छी नीयत के साथ साथ ठोस ढांचे और नीतियां जरूरी हैं।
बिल्कुल। और अंत में एक चेतावनी भी है जो आज के दौर में बहुत जरूरी लगती है। हर सामाजिक संवाद को सिर्फ समूह पहचान और शक्ति के चश्मे से देखना सार्वजनिक जीवन में जहर घोल सकता है। अन्याय का प्रति ईमानदार रहते हुए भी हमें एक दूसरे को व्यक्ति और साथ ही नागरिक के रूप में देखने की संभावना बचानी होगी।
ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अतिरेक से सावधान करता है, बिना अन्याय को नजरअंदाज किए। बहुत जरूरी संतुलन।
हाँ,
तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, सिद्धांत, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे समाज, हमारे आस पड़ोस से क्या लेना देना है? हम इन विचारों को अमल में कैसे ला सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल तरीका?
देखिए, शुरुआत शायद खुद से ही होती है। अपने अंदर जो बायस बैठे हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनको पहचानने की कोशिश करना। क्या हम अनजाने में किसी ग्रुप के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं? क्या हम एफर्ट करके अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं? सोशल मीडिया पर भी सिर्फ अपने इको चेम्बर में रहने के बजाय क्या हम अलग विचार सुनने को तैयार हैं?
सही बात है। और कम्युनिटी लेवल पे, आसपास।
हाँ, हम उन जगहों और कोशिशों का साथ दे सकते हैं जो लोगों को जोड़ती हैं, जैसे अच्छे सरकारी स्कूल जहाँ सब साथ पढ़ें, या ऐसी लाइब्रेरी जहाँ हर कोई आ सके, या मोहल्ले का कोई ऐसा इवेंट जहाँ सब मिलकर हिस्सा लें।
और अपनी बातचीत में?
हाँ, अपनी बातचीत में ऐसी भाषा इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं जो पुल बनाए, खाई न खोदें। दूसरों पर लेबल चिपकाने के बजाय उनकी बात समझने की कोशिश करें। मुश्किल है, पर कोशिश तो कर ही सकते हैं।
राजनीति को समझने में भी ये फ्रेमवर्क मदद कर सकता है ना? जैसे नेताओं के भाषणों या पॉलिसीज को हम इस कसौटी पर परख सकते कि वो समाज को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं, क्या वो डोमिनेशन बढ़ा रहे हैं या फ्रेगमेंटेशन को हवा दे रहे हैं, या फिर वो वाकई शेयर्ड सिविक आइडेंटिटी बनाने की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल। और यही बात दफ्तरों या काम की जगहों पर भी लागू होती है। सिर्फ डाइवर्सिटी हायरिंग कर लेना काफी नहीं है। माहौल ऐसा बनाना होगा जहां सब वाकई बराबरी महसूस करें, अपनी बात रख सकें और टीम का हिस्सा बने। जैसा माउंक कहते हैं, साझा लक्ष्य के लिए बराबरी से साथ काम करना प्रेजुडिस मिटाता है। ये बात वर्कप्लेस पर भी उतनी ही सच है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर एक बात है जो सुनने वाले अपने साथ लेकर जाएं, तो वो क्या होनी चाहिए? मेरे लिए शायद ये है कि एक सफल, फलता फूलता विविध लोकतंत्र कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है।
बिल्कुल।
इसे रोज बनाना पड़ता है। इसके लिए लगातार कोशिश, समझदारी, थोड़ी नरमी और ढेर सारे डायलॉग की जरूरत पड़ती है। ये एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है, कह सकती हूँ।
बहुत अच्छी बात कहें। और मेरे लिए सबसे अहम सीख है वो सदा हुआ आशावाद, स्ट्रक्चर्ड होप। मॉन्क हमें ना तो झूठी उम्मीदें देते हैं, न ही निराशा के अंधेरे में धकेलते हैं। वो कहते हैं, हाँ, मुश्किलें असली हैं, गहरी हैं, लेकिन हमारे पास उनसे जूझने के औजार भी हैं, अगर हम उनका सही इस्तेमाल करना चाहें तो। ये हमें डाइवर्सिटी को एक प्रॉब्लम या गिफ्ट की तरह देखने के बजाय एक ह्यूमन प्रोजेक्ट की तरह देखने का नजरिया देता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हम सब बिल्डर भी हैं और केयरटेकर भी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।